ாயணம் நமோலோயே சவசாவுணம் வந்து சவசேமச்சலமனோபவம் பத்தே போச்சாமி கமரி பாவுணம் நமஹ சமய சாராய ஸ்வானுபூத்யாச்ய காம்சதே விஸ்வபாவாய பாவாய சர்வபாவாந்தரக்ஷிதே சர்வபாவாந்தரக்ஷிதே. கிரந்தாதிராஜ சமயசார் ஜீ ஹே ஆச்சாரிய குந்தகுண்ட சுவாமி கி யே அனுபம் ரச்சனா भरत क्षेत्र के अभागे जीवों के लिए मानो वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला यह अपूर्व ग्रंथ आचार्य कुंदकुंड स्वामी की हृदय की गहराई में बैठकर चर्चा करने वाले स्वयं आचार्य अमृत चंद्र स्वामी, बड़ी अद्भुत रचना हो गई है यह हमारे महाभाग्य से। किसके लिए लिखा ये ग्रंथ उन्होंने, जो पढ़े उसके लिए। और इस ग्रंथ में भी जिस गाथा की चर्चा हम आपके बीच में कर रहे हैं, कल से प्रारंभ की है, बहुत अपूर्व गाथा है, छठी गाथा, छठी। इसकी टीका भी बहुत अपूर्व है और गाथा भी बहुत अपूर्व है। भगवान आत्मा का वास्तविक स्वरूप बतलाया है कि यह भगवान आत्मा कैसा है, यह आत्म तत्व कैसा है। लेकिन सही बात तो यह है कि जब हम इसे आत्म तत्व देख करके पढ़ते हैं तो कुछ नहीं हासिल हो पाता, और जब इसे अपनी बात समझ करके पढ़ते हैं तो कुछ अपूर्व बात हासिल होती है। ये बातें अपनी हैं, जो बात यहाँ कही जा रही है वही वाक्य पुनः याद आता है, निज मा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण चले। लेकिन निज मा निज बुद्धि के लिए निज कौन है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, ये अहम प्रश्न है। ऐसी बात नहीं है कि निज स्वरूप के बारे में आप लोगों ने कभी सुना ना हो, सुना तो है। और अभी यदि प्रवचन में किसी से भी प्रश्न भी किया जावे तो सामने से बहुत स्पष्ट यही जवाब आएगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका यह जवाब क्या प्रवचन सभा में देने के लिए ही है? विद्वानों के द्वारा पूछे जाने पर ही ये जवाब दिया जाता है कि मैं आत्मा हूँ? क्या आप अपने आप को आत्मा महसूस करते हैं? क्या आप ये फील करते हैं कि वास्तव में मैं आत्मा ही हूँ? जो जीव अपने आप को आत्मा महसूस करते हो फिर उन्हें तकलीफ नहीं होती, उन्हें पेन नहीं होता, उन्हें टेंशन नहीं होती, उन्हें डर और घबराहट नहीं होती, क्योंकि आत्मा महसूस करते ही ये सारी बातें चली जाती है। अब हम आत्मा को कितना महसूस कर पाते हैं और शरीर रूप अपने आप को कितना महसूस करते हैं? मैंने कहा आत्मा तो किस किस की गर्दन हिली कि हाँ बोलो। मैंने कहा मुकुंद भाई हाँ, समझे ना। मैंने कहा महेंद्र भाई हाँ बोलो क्या बात। तो हमने कहा आत्मा तो सब सुन रहे मछली। कितना स्पष्ट समझ में आता है हमारे को कि आत्मा शब्द में हमारे को मैं पने की अनुभूति नहीं है। जितनी रमेश भाई कहते मैं पने की अनुभूति होती है ना कि मेरे बारे में कह रहे हैं कुछ। और तो और कहीं यदि दीवार के पीछे से भी इस असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम सुनने में आ गया तो सब काम रोक करके सुनने लग जाता है मेरी बात चल रही है, कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है, मेरे बारे में कुछ कह रहा है। और यहाँ एक घंटा व्याख्यान हो जाए आत्मा की महिमा बताते हुए तो उसको विकल्प नहीं आता कि मेरी चर्चा चलती है, उठने के बाद भी नहीं आता है। अभी जब ध्यान आकर्षित कर रहे हैं दम जरूर लग रहा होगा, लेकिन उठने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मेरी चर्चा चल रही थी। बताओ यहाँ से उठने के बाद यदि फोन पर बात हो अपने बच्चों से, अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से, अपने किसी मित्र से, किसी स्वाध्यायी व्यक्ति से, तो क्या आप उसे यह कह सकते हैं कि आज सुबह प्रवचन में मेरी बात चल रही थी? और यदि नाम लेकर के बात की जाए तो दावे के साथ कहेंगे आज तो पंडित जी ने मेरे बारे में बात की, आज तो भरी सभा में मेरी प्रशंसा की उन्होंने, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत हंसमुख है, बहुत मिलनसार है, मेरी बहुत तारीफ की। तो हंसमुख, मिलनसार, सरल की जितनी तारीफ की गई ये मेरी थी या पड़ोसी की थी? बोलो, तारीफ तो पड़ोसी की थी और समझ ली मैंने मेरी, कितनी बड़ी गलती है। पड़ोसी की तारीफ को अपनी तारीफ समझ ली इसने, जो मेरी है नहीं। वास्तव में हम कितने बड़े धोखे में, हम कितनी बड़ी भूल में जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं। इस बात का रहस्य मात्र भी भाव भाषण नहीं है कि हम पड़ोसी के चक्कर में अपने स्वभाव को भूले हुए हैं। अनादि काल से आज तक मुझे अपनी ही खबर नहीं है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। कभी ऐसा प्रश्न उठा है मुकुंद भाई, कभी ऐसी जिज्ञासा उठी है? ये गाथा तो बाद में पढ़ेंगे हम, पहले ये प्रश्न तो खड़ा हो कि मैं कौन हूँ। अंदर से ये प्रश्न ही नहीं उठता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत अहम प्रश्न है, जो जिसके बारे में हमें विचार नहीं आता है। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत लोगों से सुनता हूँ, जब लोग इस तरह की बातें कहते हैं, पंडित जी रात पर नहीं आई, क्यों, क्या हो गया? तो बच्ची को लेकर के बहुत टेंशन थी, रात पर नींद नहीं आई, वो वाइफ को अटैक आ गया था तो रात भर सो नहीं पाए, डॉक्टर ने किडनी खराब बता दी, सुनने के बाद में तब से ऐसे होश उड़े, रात भर नींद नहीं आई हमारे को, सोचते रहे यार ये क्या हो गया, ये क्या हार्ट की प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर ने कह दिया चार ब्लॉकेज है और वो ओपन हार्ट करनी पड़ेगी, बोलो उड़ जाती नींद हमारी। जगत की किसी भी घटना को देख करके हमारी नींद उड़ जाती है, हमें चैन नहीं पड़ता है, हमसे भोजन नहीं किया जाता है, गले से घास नहीं उतरता है। कब, कब की बात है? जब लौकिक कोई परेशानी होती है तो टेंशन होती है, दुकान में आग लग गई, तीन दिन हो गए खाना पीना सब छोड़ रखा है, कुछ होश नहीं है, बोलो किसी तरह का कुछ विचार नहीं है हमारे को। अब हमने ये कहा कि अनादि काल से तुझे मिथ्यात्व रूपी रोग लगा है, ये सुनने के बाद तेरी नींद उड़ती है कि कैसे मिटेगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई और यदि ये मनुष्य पर्याय छूट गई तो अनंत काल तक निगोध में और नरकों में जाकर के रखड़ेगा रुलेगा, ये बात सुनकर के तेरी नींद उड़ती है क्या कि मुझे आज ही सम्यक दर्शन लेना है, कुछ भी करो? नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि मिथ्या दर्शन को हमें तकलीफ का कारण नहीं देखते हैं, सम्यक दर्शन हमें आनंद का कारण नहीं दिखाई देता है। मैं अपने आप को भूल गया हूँ ये मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती है, मुझे अपने आप की खबर नहीं है ये कोई संकट नहीं दिखता है हमारे को, ये क्या हो गया है, ये कितने बड़े धोखे, कितना बड़ा भ्रम है और कैसे जी रहे हैं? सोचो, ज्ञानी जीव हमारे को पागल नजर आते हैं, और ज्ञानियों से पूछो उन्हें जगत जन पागल दिखते, क्या करें बोलो, कि तड़प तड़प होनी चाहिए, कैसे होगा, ये काम कैसे हो, इससे कैसे पीछा छूट जाए, इनकम टैक्स वालों की रेट पड़ जाए ना तो ये पूछता अब इस झंझट से कैसे निपटे, हम इससे कैसे पीछे छुड़ाए, सीए से मिलेगा, वकील से मिलेगा, दुनिया भर के काम करेगा, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, किस तरह से होगा, सारे प्रयत्न करके तुम्हारे पास में भी टाइम नहीं हो ना कोई काम करने के लिए, टाइम नहीं है साहब हमारे पास में, बिल्कुल टाइम नहीं है, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है, मंदिर आने के लिए टाइम नहीं है, थोड़े से बिजी चल रहे हैं आजकल, और उस बिजीनेस में ही यदि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, पत्नी का हो जाए, बच्चे का हो जाए, तो सारे काम रुक करके पहले उधर भागता है। क्या हुआ, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं था ना, आपके पास टाइम नहीं है तो आप तो भोजन नहीं कर पाते होंगे ना, आपके पास टाइम नहीं है तो आप तो सोते नहीं होंगे ना, सब चीजों के लिए टाइम निकलता है, घूमने के लिए टाइम है, एक्सरसाइज के लिए टाइम है, योगा प्राणायाम के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, न्यूज चैनल घुमाने के लिए टाइम है, न्यूज पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, नाश्ता खाना लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब चीजों के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम है, फेसबुक और व्हाट्सएप पर टाइम पास करने के लिए टाइम है, लेकिन यदि स्वाध्याय की बात करो तो कैसा टाइम नहीं, क्या करें। ये अंदर से हृदय में ऐसा प्रश्न उठे जो झकझोर दे अपने आप को कि नहीं ये काम मुझे दिख रहा है, महासंकट मुझे वो महासंकट दिखाई दे रहा है, ऐसा संकट दिखाई दे रहा है मेरे को, ये जीवन पूरा होते ही न मालूम कौन सी गति कौन सी पर्याय में कौन सी तिरंग अवस्था में कौन से क्षेत्र में जाकर के मैं जन्म लूंगा, जहाँ जाने के बाद में सिर्फ दुख दुख और दुख और कुछ नहीं, ये चीज दिख रही है, और वो जीवन कभी भी पूरा हो सकता है। अभी अभी जीवन पूरा होने संबंधी बात की कही ना, फिर तो लगता है हाँ फिर तो पता नहीं, जब भी होगा तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे, इतनी तड़प हो तो काम चलता है। युगल जी बाबू जी ऐसा कहा करते थे, इसको भूख नहीं है, तुम जबरदस्ती भोजन के लिए पूछ रहे हो, ये जो इतने नाटक कर रहा है ना, ये नहीं खाऊंगा, ये सब्जी पसंद नहीं है, ये नहीं है, अरे ये अच्छी नहीं, ये क्यों बना लिया आपने, मैं तो नहीं खाऊंगा, अरे तो कड़ी बनाया था, इसका मतलब ये है इसको भूख नहीं है, ये बहाने बना रहा है, इससे पता लग रहा है इसको तड़प नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, अरे भूख तो उसे कहते हैं, वो बोलते हैं उनका वाक्य है, वो भूख तो उसे कहते हैं कि किवाड़ों को पापड़ समझ के खा जाए, भूख उसे कहते हैं कि कमरा बंद हो चारों तरफ से और तीन दिन से निकला मैं हो बाहर और बाहर निकलने की व्यवस्था न हो और अंदर भोजन की व्यवस्था न हो, इतनी भूख लगती है कि कपड़े को भोजन समझ के खा जाए, कागज हो तो कागज खा जाए, इसका नाम है भूख, जो मिले वो खाने को तैयार है, इसे भूख कहते हैं। इतनी तड़प गई है यहाँ इस आत्मा को जानने के लिए, थोड़ी बात कही है, आप कह सकते हैं पढ़िए हमारे को तो है, आप तो बात बताओ, प्रयोजन भूत बात बताओ आप तो, सुनो भाई क्या करें, बंद हो गया, ये जगह नहीं थी इसमें, क्या हो सकता है, दो मिनट तीन मिनट लग जाएंगे इसको कम करने या खाली करने, वो रह गया मेरे को भूल गया मैं, अब क्या हो सकता है मोहन भाई, अब क्या हो सकता है, क्या करूँ बताओ, फोन भूल के हाँ किसी किसी और का लगा दो ना तो अच्छा रहेगा, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड है एप्पल
एप्पल
है, एंड्रॉइड है क्या किसी का, एंड्रॉइड, थैंक यू, नो मिनट व्यवधान हो गया, क्षमा चाहता हूँ, एरोप्लेन मोड से कर रहे हैं, ये तो कोई कॉल आ जाता है ना बीच में तो कर रहा है, मेहमान रमेश भाई ठीक है क्या? बराबर है। हाँ नहीं आता है।
हाँ
पुलिस स्क्रीन नहीं आती।
हाँ आएगी।
कोई बात नहीं, चलो जो है सब ठीक है, दिमाग नहीं लगा ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं। तो आत्मा क्या है? भूत प्रेत नहीं है, कोई डरावनी चीज नहीं है। मैं कौन हूँ और क्या स्वरूप है उसे यहाँ इस गाथा में बता रहे हैं। हम मूल से गाथा पढ़ते हैं, फिर उसकी टीका पढ़ेंगे। देखिए, नवी हो दिया पमस्तो पमस्तो जान गो तुझो भावो एवं भणंति सुधम नादो जो सो दुसो जीव ना प्रमात है ना प्रमात है बस एक ज्ञायक भाव है इस भांति कैसे शुद्ध पर जो ज्ञात रह तो वही है। क्या कह रहे हैं? इस भांति शुद्ध कैसे ज्ञात वो तो वही है। देखिए जरा, जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। बहुत गजब बात कह दी है, प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। कल हमने चर्चा की थी इसकी, दो तीन प्रकार से इसके अर्थ किए थे कल हमने आपके बीच में, और अंतिम निष्कर्ष वाक्य यह कहा था कि इसका अर्थ ये है कि मैं पर्याय मात्र से पार हूँ। प्रमत्त और अप्रमत्त में गुणस्थान शामिल किए हैं, पहले से 14वें गुणस्थान तक। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ ये कह करके कहना चाहते हैं कि मैं गुणस्थानातीत हूँ, गुणस्थानों से परे हूँ मैं। मुझ में गुणस्थान नहीं है, मुझ में अवस्थाएं नहीं है, मुझ में नित्यात्व नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो मैं ऐसा नहीं हूँ। जिसे नित्यात्व है वो मैं नहीं हूँ, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है वो मैं नहीं हूँ, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी मैं वो भी नहीं हूँ, जिसे केवल ज्ञान और अनंत सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी मैं वो भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे काम पर्याय में होंगे और मैं पर्याय से पार एक ज्ञायक तत्व हूँ। पर्यायों से भिन्न एक त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ मैं, ज्ञायक, उसका नाम है ज्ञायक। ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, पर्याय मात्र से भिन्न देखते ही अब तकलीफ क्या है बताओ, क्योंकि जितनी तकलीफ दिखती है वो तो पर्याय में दिखती है और मैं पर्याय रूप हूँ। जब मैं पर्याय रूप नहीं हूँ अब तकलीफ कौन सी होगी? अब बताओ, अब तकलीफ बताओ जरा, किसी की भी बात करो, ऐसी कोई तकलीफ बतलाओ जो तकलीफ पर्याय में नहीं हो और द्रव्य में हो। क्या ऐसी कोई तकलीफ नहीं? कोई तरह की परेशानी नहीं है, सही बात, एक रंग के मात्र भी परेशानी नहीं है, ध्रुव में है ही नहीं। अपने ध्रुव स्वरूप में जब पर्याय प्रवेश नहीं करती है, ध्रुव स्वरूप जब पर्याय मात्र से पार पर्याय मात्र से भिन्न है, तो फिर ये दुख और कष्ट कहाँ है? ये ऊपरी ऊपरी लोटे हैं, ऊपर ऊपर है ये सब। इस ऊपरी ऊपरी स्वरूप को छोड़ो और अंदर में डुबकी लगा करके देखो तो अतिन्द्रिय आनंद रस के झरने झरेंगे। वो स्वरूप कुछ अपूर्व है, ऊपर से काई छाई हुई हो ना, ऊपर ऊपर से गंदा दिखता है, थोड़ा अंदर में डुबकी लगाओ तो न काई है न मलिनता है, अंदर में निर्मल पवित्र जल है। अंदर झांक करके देखने की बात है। तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। आत्मा शुद्ध तो है, इसका मतलब शुद्धता क्या है? शुद्ध तो है लेकिन शुद्ध किसे कहते हैं? बहुत सुंदर वाक्य कह दिया है, ध्यान देना वाक्य। आप लोगों के पास में पुस्तकें है नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ वाक्य, ध्यान देना। जो एक ज्ञायक भाव है उसकी चर्चा कर रहे हैं, ज्ञायक भाव की चर्चा। वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। ये सब क्लियर हो गई। वो ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। माने प्रमत्त अप्रमत्त देखना ये अशुद्धता है। इस प्रकार शुद्ध है इसका मतलब प्रमत्त और अप्रमत्त पना निकाल दो, प्रमत्त अप्रमत्त पने की तरफ दृष्टि ना दो, तो क्या है, तो शुद्ध ही है। तो अशुद्धता कहाँ है? ये अशुद्धता तेरे प्रमत्त अप्रमत्त देखने में है। अपने आप को संसारी देखने का नाम अशुद्ध है, अशुद्धता नहीं है द्रव्य में, स्वरूप में अशुद्धता का प्रवेश नहीं है, आत्मा में अशुद्धता प्रवेश कर नहीं सकती है, ऐसा वज्र का किला है। इसमें कहाँ अशुद्धता प्रवेश करे इस ज्ञायक स्वरूप में? त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं है। अब तू मानता है कि मैं अशुद्ध हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ हुई बताओ? तूने यदि ये मान लिया कि मैं अशुद्ध हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? द्रव्य कितना अशुद्ध हो गया? अरे तेरे अशुद्ध मानने के काल में भी वो त्रिकाल शुद्ध है, मान्यता के काल में भी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता से द्रव्य स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्य स्वरूप सदा काल शुद्ध था, है और रहेगा। उस शुद्ध स्वरूप की स्वीकृति से शुद्धता प्रकट हो जाती है और शुद्ध स्वरूप को स्वीकार नहीं करने से अशुद्धता बनी रहती है। आपको क्या करना है, नक्की करो। आप जो शुद्ध जानेगा वो शुद्ध हो जाएगा, जो अशुद्ध जानेगा वो अशुद्ध बना रहेगा। जानना किसको है? एक बहुत सुंदर वाक्य आया था छत्र चूड़ामणि में, नकुल भाई आपको सुनते हैं रोजाना, ध्यान होगा आपको। उसमें एक वाक्य आया था, जो जैसे देखते हैं वो वैसे हो जाते हैं, जो जिसको देखता है वो उसके जैसा बन जाता है। बहुत सुंदर वाक्य, काफी चर्चा की मैंने इस लेकर पे। जो जिसको देखता है, आप यदि दूसरों की कमियां देखते हैं तो समझ लेना अपने आप में उन कमियों का विकास कर रहे हैं। आप यदि अशुद्धता देख रहे हैं आप अशुद्ध हो जाएंगे। आपकी दृष्टि यदि किसी के दोष और अवगुण देखने में है तो आप अवगुण विकारी और दोषी हो जाएंगे, और आप यदि दूसरे के गुणों को देखते हैं तो आप गुणवान हो जाएंगे। जो जैसा दिखता है वो वैसा हो जाता है, वो वैसा बन जाता है। ये स्वरूप है इसी तरह का। आपकी दृष्टि किसके पास, किसके ऊपर है ये बताओ? आपकी दृष्टि यदि आपके पड़ोस में बैठे हुए, बगल में बैठे हुए व्यक्ति के मोबाइल पर है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पसंद आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको चाहेंगे और कभी अवसर मिलेगा तो आप वैसा ही मोबाइल खरीद लेंगे। ये हुआ, आपको वो चीज पसंद है ना, जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। अब आप शुद्धता देखोगे शुद्ध बन जाओगे, अशुद्ध देखोगे तो अशुद्ध बन जाओगे। बोलो अपने में क्या चीज इकट्ठी करनी है, किस चीज का संग्रह करना है, गुणों का क्या अवगुणों का? आप क्या चुनते हैं? अपने परिवार के दूसरे सदस्यों में से क्या चुनते हैं? अपने सेंटर में आने वाले दूसरे लोगों में से आप क्या चुनते हैं? आप अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्किल, उनमें से आप क्या चुनते हैं ये बताओ। एक व्यक्ति गार्डन में गया, चल रहा था वहाँ, वहाँ जाकर के बहुत सारे फूल खिले हुए थे, उसने फूल चुनना शुरू कर दिया। फूलों को चुन रहा था, अचानक एक आवाज आई, ए भाई क्या गलत काम करते हो, फूल फूल चुन लेते हो और कांटों को छोड़ देते हो। देखा तो आवाज बगल के पौधे से आ रही थी। मैं क्या गलत करता हूँ इसमें, अच्छे ही तो काम कर रहा हूँ, फूल ही चुनना चाहिए और कांटे ही छोड़ देना चाहिए, अच्छा काम कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या गलत काम किया? तो उस पौधे ने कहा, बातें तो बड़ी समझदारी की करते हो लेकिन जब किसी मनुष्य से मिलते हो तब क्या चुनते हो? क्या बातें तो बहुत समझदारी की कर रहे हो, ये फूल फूल चुन लेना चाहिए और कांटों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब तुम किसी दूसरे परिवार के सदस्य से मिलते हो तब तुम क्या करते हो, तब उसके अवगुणों को चुनते हो और गुणों को छोड़ देते हो। उस पौधे ने उसे शिक्षा दी कि सुनो एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति जिस चीज को चुनता है उसके पास वही इकट्ठा हो जाता है। क्या कह दिया? जो व्यक्ति जिस चीज को चुनता है उसके पास में वही चीज संग्रहित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तुम फूल चुनोगे तुम्हारे पास में फूल इकट्ठे होंगे, तुम कांटे चुनोगे तुम्हारे पास में कांटे इकट्ठे होंगे, किसी मनुष्य से मिलकर के दुर्गुण यदि चुनोगे तो तुम्हारे पास में दुर्गुण इकट्ठे होंगे। यदि तुम किसी व्यक्ति से मिलकर उसके गुणों को चुनोगे तो तुम्हारे पास में गुण इकट्ठे होंगे। बोलो, जो देखता है वो वैसा हो जाता है। आप क्या चुनते हैं? हम किसे इकट्ठा कर रहे हैं, हम किसे संग्रह कर रहे हैं, हमारे पास में स्टोरेज किसका बढ़ा रहे हैं, हम इकट्ठा क्या चीज कर रहे हैं। ये आचार्य देव कह रहे हैं तू विकार को मत देख, विकार को देखने से विकार एकत्रित होता है और स्वभाव को देखने से स्वभाव रूप परिणमन होता है। विकार को देखेगा तो विकार रूप परिणमित होता रहेगा और स्वभाव को देखेगा तो स्वभाव अनुसार ही परिणमित हो जाएगा। ये करने योग्य काम है भाई साहब, ये देखना है एक ज्ञायक को, ज्ञायक भाव को देखने की महिमा ही कुछ अपूर्व है। आज तक अनादि काल से जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं एकमात्र उन्होंने अपने ज्ञायक स्वरूप को देखा है। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम दुख मुक्ति है, इसी का नाम पूर्ण आनंद है, इसका नाम अनंत सुख है। ये सब कुछ एक में शामिल है, कितने अपने आप को जान लेने, बस अपने आप को जानना। तो सब जानने से काम हो जाएगा क्या? कि पहले जानो तो सही, जानेगा तो निज में निज बुद्धि आए बिना नहीं रहेगी। फिर अपने में अपनापन क्यों नहीं हो रहा है? तो होगा कैसे पंडित जी, कोई उपाय बताओ। निजमा निज बुद्धि कैसे हो, इसका उपाय बताओ। इसका उपाय क्या है, निज में निज बुद्धि लाने का क्या उपाय है? कि एक ही उपाय है, पहले जान। जानता नहीं है इसलिए अपनापन नहीं होता है, जानता नहीं है इसलिए महिमा नहीं आती है। जानते ही तेरा चित्त आकर्षित होगा उसकी तरफ, ये जानने की महिमा है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं तू जान तो सही एक बार, तू सुन तो ले। यहाँ का तो पता नहीं मुझे, लेकिन इंडिया में हमारे घरों में हमारे मकानों के बाहर से बैल बजती है और सेल्समैन आते हैं बहुत सारे। फिर हम कहते हैं भैया कुछ नहीं किए, दरवाजे पर आकर के बैल बजा देते हैं। वो पता है क्या कहता है? सर एक बार देख तो लो, सर एक बार सुन तो लो मेरी बात। वो जानता है यदि ये सुनेंगे और देखेंगे ना तो फिर ये आकर्षित हो जाएंगे। हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। जगत में ऐसा ही होता है। मुकुंद भाई मॉल में गए और मॉल में जाकर के आप कितनी चीजें हैं, कुछ नहीं देख रहे, कुछ पता नहीं लग रहा है। और वहाँ यदि किसी चीज का डेमो चल रहा था और वो देखा आपने, क्या की चीज है यार, तो सबका पता लगा भाई, सबका महिमा आई उसकी, खेरे देखे वो महिमा आ रही है। अब हम कह रहे हैं तुम आत्मा के बारे में सुनो तो सही, आत्मा के स्वरूप के बारे में सुने और तुझे आनंद नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा के गुण, आत्मा के फीचर क्या, ये जो नए नए मोबाइल आते हैं ना, टेक्नोलॉजी से दिखती है, ऐसे ऐसे फीचर आते हैं इसमें जिसको देख करके आपको लगे और क्या गजब चीज है, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। कहीं नहीं, आपने यहाँ टच कर दिया, अब कान में लगाना नहीं, ईयरफोन भी नहीं लगाना है क्या, हाथ में भी मोबाइल नहीं उठाना है, आप चलते रहो और सीधा आवाज आपके कान में आएगी। ये कैसे हो गया, ये कैसी चीज है, मजेदार चीज लगती है हमारे को, अपग्रेड कर लें। ये नया है, फीचर आ गया है, आपको पता है इसमें ये भी चीज आ जाती है। आजकल आपकी मोबाइल में ये भी पता लग जाता है कि आप कितनी देर मोबाइल देखा आपने, है ना, आ जाता है। इससे आप क्या कर सकते हो, सब पता लगता है आपको, कितने चल लिए हो, कितना क्या है, हैं? दिन भर में कितने कदम चले आप, हर चीज का पता लगता है उससे। ये चीज में सब कुछ,
سب لوگ دنیا مٹھی میں پوری کی پوری دنیا آپ کی مٹھی میں اور ایک کام ہو جاتے ہیں. کسی انجان ویکتی کو اس کی مہیما بتائی جائے تو کتنی مہیما آتی ہے, ٹیکنالوجی کی کتنی مہیما آتی ہے کہ سنو ایک بار موبائل کے فیچرز کو چھوڑ کر یہ آتما کے فیچرز جاننے کا پریاس کرو. اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے میرا من آکرشت ہو, ہے کچھ ایسا اس میں آتما میں؟ آتما تو نیرس ہے صاحب, ہم نے پہلا سنا ہے. آتما میں تو کوئی رس نہیں ہے, مزہ نہیں آتا یار آتما کی باتیں کرنے میں. کہ تو نے ڈھنگ سے پڑھا نہیں, تو نے ڈھنگ سے سنا نہیں, تو آتما کی چرچا کو ایک بار ڈھنگ سے سن تو صحیح گہرائی سے کہ کون سے فیچرز ہیں. کہ دیکھو پہلا فیچر بتاتے ہیں یہاں, میں پڑھتا ہوں بہت گجب کے. ایک ایک کوالٹی ایسی ہے بھائی صاحب جو ساری تکلیف اور سنکٹ مٹا دیتی ہے. مہندر بھائی آج نیا موبائل خرید کر کے لائے ہیں, کون سا؟ آئی فون ایکس نیا خرید کر کے لے کر کے آئے, اور لانے کے بعد گھر پر ڈبے میں پیکنگ میں سے نکالا اس کو اور دیکھا, تو دیکھ رہے تھے اس کو رکھ کر کے ہم دو منٹ کوئی کام کرنے کے لیے ہی گئے. اتنی دیر میں دو سال کا بچہ ہمارا تھا, اس بچے کے ہاتھ میں تھا ایک چابی تھی ایک, اس کو لے کر کے اس نے موبائل کی اسکرین پر گر دیا, اور ہم نے جیسے ہی دیکھا اور وہ کیا کر رہا ہے, عقل نہیں ہے کیا تیرے میں کیا؟ اور میں دوڑ کر کے آیا, اتنے میں وہ بھاگا اور بھاگ کر کے اس نے پانی کی بالٹی میں پٹک دیا, مر گئے. اب کیا ہوگا بتاؤ؟ اب اس کو بالٹی میں سے نکالا, پریشان ہو رہا ہے, سکھا رہا ہے, کھول رہا ہے, اس کو دھوپ میں رکھ رہا ہے. آج تو گئے نیا لے کر کے آیا تھا, کتنا $1000 کا, پہلے 1200 کا آ رہا تھا, کم ہو گئی ریٹ, $1100 کا لے کر کے آیا تھا. یہ کیا ہو گیا, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب وہ اس کو تو ہم نے دھوپ میں رکھا اور پھر آ کر کے ہم بیٹھے, تو وہ جو تھا نا موبائل, اس موبائل کے ساتھ میں اس کی ایک کتاب آئی تھی ساتھ میں, ایک بکلیٹ ساتھ میں تھی. آ کر کے بیٹھے, سر پکڑ رکھا تھا, اس کو اٹھائی تو اٹھا کر کے جیسے ہی ہم نے دیکھا اس سے لکھا تھا اسکریچ پروف. اس سے آگے والی لائن میں لکھا تھا واٹر پروف. اب بتاؤ کیا ہوگا, چلا گیا, ساری ٹینشن مٹ گئی, اب تکلیف نہیں دکھ رہی ہے کچھ بھی, اب ٹینشن نہیں ہے, اور مزہ آ گیا. کیا ہوا یہ تو بتاؤ کیا؟ اب اگلی بار وہ بچہ اٹھا کر کے پانی, ارے تو ڈال گیا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں بگڑنے والا ہے اس کا. یہ مہینہ کب آئی بتلاؤ میرے کو؟ جب نالج آیا تب. مانے وہ جو موبائل تھا, اس موبائل کے سمبندھ میں پوری جانکاری وہ ایک چھوٹا سا جو پوتھنا تھا نا اس میں لکھی تھی. جیسے ہی ہم نے اس کے بارے میں جانکاری لی, ہماری آکلتا اور ٹینشن مٹ گئی. اب ہم یہ کہتے ہیں سنو, تمہیں آتما کو لے کر کے, اپنے آپ کو لے کر کے جتنی ٹینشن ہو رہی ہے, جتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے, ایک بار تم آتما کی ان وشیشتاؤں کو یہ آچاریہ دیو کے نردیشانوسار پڑھ کے تو دیکھو, تمہاری ٹینشن نہ مٹ جائے تو کہنا. بولو, تمہیں جو گھبراہٹ ہوتی ہے نا, مر نہیں جاؤں, مر جاتا تو ایسا ہو جاتا تو ہر رام یہ کیا ہو گیا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تم ایک بار اپنے فیچرز کو دیکھو, تمہیں جو نقصان کو لے کر کے ٹینشن ہو گئی ہے, ارے صاحب بہت بڑا نقصان ہو گیا, بہت نقصان ہو گیا بھائی صاحب, آپ کو کیا بتاؤں, اتنا نقصان ہو گیا میں بتا نہیں سکتا آپ کو. کہ سن, یہ کہہ رہے ہیں تیرا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے, جس کا نقصان ہوتا ہے وہ روئے, میرا ہوتا ہی نہیں ہے, مجھے لائے گی ٹینشن. جب میرا نقصان نہیں ہوتا, جب مجھ میں کچھ کمی نہیں آتی, جب باہری کوئی شکتیاں میرے اوپر پربھاؤ نہیں ڈال سکتی, جب میں پر پدارتھوں سے اپربھاوت رہنے والا چیتن تتو ہوں, تو مجھے کس بات کی پرابلم ہے, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आत्मा कैसा है? बोले सुन, आत्मा की क्वालिटी सुनेगा ना, तेरे में कितनी क्वालिटी है, तू अपने आप को नहीं पहचान रहा है। तू यदि अपनी क्वालिटी को पहचानेगा तो तू पता नहीं क्या काम कर सकता है। ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना महेंद्र भाई
जी,
ये लोग सिर्फ आत्मविश्वास जगाने का काम करते हैं,
बस सही है।
ये सिर्फ इतना काम है इनका। इन लोगों के पास सिर्फ इतना काम है मोटिवेशनल स्पीकर का कि वो आप में ये विश्वास डेवलप कर सके कि यू कैन डू इट। बुलवाते हैं भरी सभाओं में, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुझ में इतनी शक्ति है, तुमसे हो सकता है, तुम कर सकते हो। ये विश्वास जगाते हैं, इस बात के पैसे लेते हैं $100 एक एक सेमिनार के। ये विश्वास डेवलप हो गया तो फिर आप कर सकते हो। सवाल तो विश्वास का ही है ना, सवाल तो इसी बात का है ना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। इतने ही मना कर दे, मुझसे नहीं हो सकता है। आत्मा का अनुभव मुझसे तो नहीं हो सकता है, सम्यक दर्शन मेरे से तो नहीं हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। वो श्योर है राम, दूर से हाथ जोड़, हमसे कैसे होगा? हम जब कहते हैं ना तुम भगवान बन सकते हो, कहते हैं अरे यार क्या बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है। भगवान बनना इतना आसान थोड़ी नहीं, भगवान तो नहीं बन सकता, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? अरे तू बन सकता है, तुझ में भगवान बनने की सामर्थ्य है, एक बार पहचान उस चीज को। तेरे में कौन कौन सी क्वालिटी है तुझे इस बात का पता नहीं है। जैसे वो सेमिनार में तुमको तुम्हारी क्वालिटी बतलाते हैं, उसी तरह से यहाँ आचार्य कुंदकंद स्वामी मुझे मेरी क्वालिटी बता रहे हैं कि तुझमें जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, सत्यत्व शक्ति है, प्रकाश शक्ति है। कुछ ये शक्तियाँ मेरे में। एक बार ऐसा हुआ महेंद्र भाई, तो किसी जगह पर प्रवचन के लिए जाना था मेरे को, दिल्ली की बात है, और उन्होंने पूछा कि आपका कोई परिचय वगैरह हो तो कुछ बतला दो जिससे उसको पब्लिश कर दे, उसके अंदर छाप दे। तो मैंने तो क्या परिचय बतला था, ठीक है ये मैंने जो जानते हो तो लिख लो। फिर भी उन्होंने ज्यादा आग्रह किया तो मैंने कहा एक काम करो, लिखना तो मत लेकिन कोई पूछे तो जरूर बताना कि क्या, कि वो जो पंडित जी आ रहे हैं ना उनमें बहुत तरह की शक्तियाँ हैं। तो कई शक्तियाँ हैं उनमें। अच्छा, अब ये उन्होंने किसी को बतलाया, बाद में उन्होंने कही मैंने बतलाया। अच्छा, शक्तियाँ उनके पास में। फिर आए मिले हमसे, मैंने सुना है आपके पास में कोई रिद्धियाँ हैं, कोई शक्तियाँ हैं। मैंने कहा एक दो नहीं, बहुत सारी है। तो कौन सी है? मैंने कहा जी बताओ, शक्ति शक्ति शक्ति, ये शक्तियाँ किसकी है? ये मेरी नहीं है क्या? जो सबकी होती है ना उसे अपनी मानता ही नहीं है। अरे भाई मेरे में ये शक्तियाँ हैं, इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, इसकी वैल्यू समझ में आ जाए कि शक्ति क्या काम करती है तो फिर है कहाँ तकलीफ, मुझे समझ में नहीं आता है। फिर रोता रहता है, दुख पाता रहता है, परेशान होता रहता है, ये पहचान नहीं पा रहा है अपनी शक्ति को, उन पावर्स को। इसे तो ऐसी शक्तियाँ चाहिए जैसे आकाश में उड़ने की शक्ति हो। मिस्टर इंडिया देखी जैसा लगता गायब हो जाएगा, ऐसी कोई घड़ी मुझे भी मिल जाए ना कि मैं गायब हो जाऊँ। 25-30 साल पहले एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, तो घड़ी बांधता था और गायब हो जाता था। ऐसी मूवी थी, अदृश्य हो जाता था, दिखाई नहीं देता था। तो घड़ी पहनते गायब हो जाऊं, मुझ में आकाश में उड़ने की सामर्थ्य हो तो ऐसा लगता है कुछ शक्ति है। लेकिन भाई तुझे कोई मार नहीं सकता, ये तेरी शक्ति समझ में नहीं आती है। देखो टीका का पहला ही वाक्य पढ़ता हूँ मैं, ऐसा ही वाक्य है। अभी ऊपर अनुवाद तो पढ़ लिया ना अपन ने, अनुवाद भी आधा ही पढ़ा है, अभी तो वापस पढ़ता हूँ। जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है,
इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। ये शुद्धता, शुद्धता को समझाया। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। जो ज्ञायक है वो ज्ञायक रूप से ही प्राप्त होता है। जो ज्ञायक है वो तो ज्ञायक मात्र ही है, ज्ञायक के अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, इसके अलावा नहीं है वो कुछ भी। ज्ञायक को ज्ञायक मात्र समझो, और कुछ भी नहीं है ज्ञायक के अतिरिक्त। जो है तो वही है। ये तो हुआ गाथार्थ, ये तो गाथा का अर्थ हुआ। अब जरा हम टीका की लाइनें पढ़ने का प्रयास करें। टीका में क्या कहते हैं देखिए। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, क्या कहा, जो स्वयं खुद अपने आप में अपने से ही सिद्ध होने से, ब्रैकेट में लिखा, किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है। कौन किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञायक भाव समझा रहे हैं, ज्ञायक भाव का स्वरूप समझा रहे हैं। ये फर्स्ट फीचर दे दिया, कौन सा, अनादि सत्ता रूप है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। कौन मुझे उत्पन्न करे, कौन है मेरे ऊपर जिसकी चलती हो। जब ये ऐसा समझता है ना, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से, जब ऐसी भाषा निकलती है ना इसकी, इसका मतलब ये इनके कमीशन में है। लगता है इसमें भी जगह नहीं है क्या, दो बार तो रुक गया, बंद हो गया ये। चलो कोई बात नहीं, फिर चलाता हूँ। बंद हो गया, दो बार हो गया बंद अपने आप। नहीं अभी तो 5 मिनट में हो गया, पहले 15 मिनट में हुआ, फिर 5 मिनट में फिर हो गया। कोई बात नहीं, ये ऐसे ही अंतराय करण का इसी प्रकार का हो गया है, क्या करें। अब ये किसके अंतराय का हो गया आप लोगों में से, जिसकी वजह से सबको फल मिल रहा है।
सबका
है, सबका खुद खुद का है, ईश्वर एक है ना उसमें, छोटे छोटे तो स्पेस तो है, समझ भाई, स्पेस ओके।
मेमोरी कार्ड उसमें डालना पड़ा है,
क्या चीज,
मेमोरी कार्ड उसमें एक्स्ट्रा डालना पड़ा है।
कोई बात नहीं, आपके कोई प्रश्न हो तो बोलो, 2 मिनट जब तक ये कर रहे हैं।
ये जो गाथा है,
हाँ
वही गाथा अष्टम सिद्धि में उन्होंने 101 में लिया है।
अच्छा, 101 में क्या शब्द है वहाँ,
इतना ही रखे, आत्मा सत चैतन्य सर्वभास रही।
वाह, सत चैतन्य में,
आत्मा सत चैतन्य में, सत में तो स नीचे का,
हाँ हाँ,
चैतन्य में सर्वभास रही।
वाह,
इसी के लिखा, जैसी केवल पानी मोक्ष बन सकेगी। केवल नाम पावना है, लेना है, मोक्ष लेना है, तो ऊपर की जो लाइन है उसको स्वीकार करने
का। वाह, विद्वानों ने स्वरूप बता दिया भाई, एक एक वाक्य के अंदर मर्म भर दिए हैं। ये तो फीलिंग की चीज है, फील करें तो मजा आए, फील नहीं करें तो बस फिर। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टीका, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। कौन है अनादि सत्ता रूप? मैं कह रहा था आपसे नरेंद्र भाई कि जिसके बारे में इस व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि इसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ तो हूँ, ये व्यक्ति उसके आदि हो जाता है, ये नेचर है इस तरह का, अपने आप ही ऐसा, जिसने ऐसा समझ लिया ना यार आज मैं जो कुछ भी हूँ ना इनकी वजह से हूँ भाई साहब, इनकी वजह से खड़ा हुआ हूँ, तो फिर वो उनके अधीन हो गया। अब हम ये कह रहे हैं तू किसी के भी अधीन न हो क्योंकि तू अनादि सत्ता स्वरूप है। मेरा अस्तित्व किसी और की वजह से नहीं है, मैं किसी और की वजह से टिका हुआ हूँ ऐसा नहीं है, मैं अनादि सत्ता स्वरूप हूँ। और इतना ही नहीं, अजन्मा तो हुई, मेरा जन्मदिन नहीं होता, मेरी बर्थडे नहीं होती क्या? तो और क्या कह रहे हैं? इतना ही नहीं, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, और कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। कौन? ज्ञायक भाव। कौन है वो ज्ञायक भाव वाला? ये कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ वो ज्ञायक भाव वाला। यार एक बात ऐसी है मुकुंद भाई, कि एक बात हृदय में उतर जाए कि मैं अनादि अनंत हूँ, तो खत्म है फिर सारी कहानी। अनादि की सारी दास्तान, दुखद दास्तान सब खत्म हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने मेरे को गाली दी, अब कितनी तकलीफ होगी बताओ? कि जिसको गाली दे रहा है ना वो टेम्परेरी है, और मैं अनादि अनंत हूँ, मुझे क्या गाली देगा कोई, मुझे क्या कोई अपशब्द कहेगा? अब मौत का घबराहट हो सकता है, डर लग सकता है मृत्यु से। सबसे बड़ा भय क्या है? सात भयों में मौत का भय, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है महेंद्र भाई। इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं है मौत से बढ़कर, इतनी बड़ी तकलीफ है मौत। ऐसा लगता है मौत इसे आ गई तो भाई साहब मौत की क्या क्या से डरता है। मौत की बात नहीं करो, मैं मर जाऊं यदि ऐसा वाक्य कह दो, थोड़ी नहीं नहीं शुभ शुभ बोलो। अशुभ बातें मत करो, मरने वालों की बातें मत करो। आप सोचो जरा, कोई कोई व्यक्ति बारात लेकर के दरवाजे पर खड़ा हुआ हो, वो ऐसा हो जाए आपके गुजराती में भी क्या कहते हैं,
क्रिया करते हैं,
कुछ क्रिया करते हैं, तोरण होता है ऐसा कुछ, शुक्रिया होती है। घोड़े पर सवार होकर के आता है दूल्हा और दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ है, और कोई व्यक्ति उस समय ये कह दे रहे क्या मुर्दे से शादी कर रहे हो। कोई व्यक्ति वहाँ, कोई डेढ़ अकल वाला बुद्धिमान व्यक्ति, वो ये कहे यार इसी इसके गीत गा रहे हो, इसी इसको याद कर रहे हो, अरे उनको भी तो याद कर लो जो तुम्हारे खानदान में पहले मरे हैं, थोड़ा बहुत मरने वालों की भी तो याद कर लो। तो क्या कहेंगे? अरे भाई साहब ऐसे समय पे ऐसी बातें नहीं करते, अशुभ बातें नहीं करते हैं। मौत की चर्चा को अशुभ कहकर के पुकारता है, जबकि वो सच्चाई है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, वो सच्चाई है। पर्यायार्थी कहने की दृष्टि से देखने पर ये मौत की चर्चा नहीं करना चाहता है, उससे डर लगता है इसको, ऐसी बात मत करो। आचार्य देव कह रहे हैं कि तू मरता नहीं है, मौत की चर्चा से डरने की जरूरत नहीं है। तूने अपने ज्ञायक स्वरूप के ऊपर ऐसा कवच है, ये अनादि अनंत का ऐसा कवच है, जिस कवच को पहन लेने के पश्चात अब सामने कोई बंदूक लेकर के भी खड़ा हो तो घबराहट नहीं होती। आपको घटना शायद मैंने सुनाई थी पहले, दिल्ली की हमायन की गांव की घटना है। गांव के बहुत वैभव संपन्न व्यक्ति का बच्चा, एक छोटा सा 4 साल का बच्चा, वो किडनैप कर लिया उसको। बच्चा पाठशाला जाता था, 2-5 दिन पाठशाला गया था, उस बच्चे को किडनैप कर लिया गया। और किडनैप कर लिया तो अब फिरौती की रकम मांगने के लिए फोन किया उन्होंने, और फोन करके बच्चे को कहा कि बात कर, बंदूक लगा दी नहीं तो मार देंगे। तो बच्चा क्या कहता है? मैं नहीं करूंगा बात, आप पैसे मांगोगे ना मेरे पापा से, मैं बात नहीं करूंगा, फोन ही नहीं करूंगा मैं, तो मार देंगे तेरे को, समझता क्या है, मार दो मार दो, मैं तो मरता ही नहीं हूँ। क्या बोला? चलाओ गोली, मैं तो मरता ही नहीं हूँ। पाठशाला में 2-4 दिन पढ़ करके आया हुआ बच्चा, जिसने ये बात सुनी कि जीव तो अनादि अनंत है और मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ, क्या क्या पढ़ा बच्चे ने, मैं जीव हूँ
ज्ञान से जानता हूँ,
ये गया, ये बंद हो गया। आज नहीं है योग इसका रिकॉर्ड होने का, क्या करें, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ, ज्ञान के माध्यम से जानने का काम करता हूँ मैं, ये मेरी योग्यता की बात है, ये मेरी सामर्थ्य की बात है। और जब मैं जीव हूँ और ज्ञान से जानता हूँ और कोई मुझे मार नहीं सकता है, अब तकलीफ कौन सी होगी?
उस बच्चे को सच्ची घटना है महेंद्र भाई, उस बच्चे को जिन्होंने किडनैप किया था वो उसके पैरों पड़ गए, उसको वापस छोड़ने के लिए आ गए, एक पैसा नहीं मांगा। बोलो, खुद छोड़ने के लिए आ गए उनको। बोले यार ये क्या बच्चा है ये, और बाद में घटना का पता लगा तो बोले ऐसा क्या हुआ, कहते छोड़ने के लिए आ गए। तो उस बच्चे ने ये बताया कि मैंने तो कह दी थी मार दो मेरे को, मैं नहीं बोल करूंगा अपने पिताजी को, तो मुझे बचा लो कि मेरे को मार रहे हैं पीट रहे हैं, क्योंकि मैं मरता ही नहीं। इतना सा विश्वास आ जाने पर कितनी दृढ़ता हो जाती है, इतने से विश्वास में, इस विश्वास में बहुत दृढ़ता है, इस विश्वास में बहुत काम होते हैं, इस विश्वास से मरता नहीं हूं मैं। अब कोई व्यक्ति हमारे को कुछ खिलाए पिलाए, कुछ दंड दे दे, कोई सजा सुनावे, कोई गालियां दे दे, कोई बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, अनादि अनंत का मतलब ये है कि मेरी लेंथ बहुत लंबी है, बीच के इस प्रवाह क्रम में थोड़ी सी यदि लहरें उठ गई है तो उन लहरों में तकलीफ नहीं दिखती है कुछ भी।
मैं तो सागर हूँ,
मैं तो सागर हूँ। सागर को लहरों से क्या फर्क पड़ता है? सागर की लहरों में कदाचित एकाध लहर में यदि कोई गंदगी उठ गई हो तो उससे सागर की शुद्धता में क्या फर्क पड़ रहा है? अनादि अनंत सागर हूँ ना मैं तो, जन्म नहीं होता, कोई मुझे मार नहीं सकता, मार नहीं सकता, ये बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी पावर है, कोई व्यक्ति मेरे को मार नहीं सकता। ये ताकत हमारे को समझ में नहीं आती है, ये पावर हमारे को समझ में नहीं आती है, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। देखो दो वाक्य पढ़े अभी हमने यहाँ, इन दोनों वाक्यों में क्या कहा, स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, माने किसी से उत्पन्न न हुआ होने से, किसी और ने उत्पन्न किया क्या?
नहीं।
मुझे किसने पैदा किया, मैं किससे हूँ, अपने माता पिता से? नहीं, आप गलत कहने में हैं, आप अपने माता पिता से नहीं है, तो फिर किससे हैं? कि मैं अपने आप से, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ये बात कह रहे हैं यहाँ। मेरा कोई जन्मदाता नहीं है, मेरे ऊपर किसी की चल सके ऐसा नहीं है, और अनादि सत्ता रूप है। क्या मैं हूँ, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, इसलिए तो अनादि सत्ता रूप है। उत्पन्न होता तो फिर शुरुआत हो जाती ना
जी,
मेरी शुरुआत कब से है? इस जन्म से नहीं, मैं पहले भी था और उसके पहले भी था और उसके पहले भी था। अब बताओ ये संयोग चले जाएं, छीन लिए जाएं तुम्हारे से, तो कितनी तकलीफ होगी? नहीं होगी तकलीफ, क्यों? क्योंकि अनंत बार छोड़े और अनंत बार प्राप्त किए। जिन संयोगों को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा हो उनके चले जाने में तकलीफ का क्या काम है? अरे यार मुझे तो आदत है इनको छोड़ने की, कई बार छोड़ा है हमने, इसमें हमें दिक्कत नहीं होती कुछ भी। आप बताओ जिस व्यक्ति को बार बार खांसी जुकाम छींके आती रहती हो, जो हैबिचुअल हो इस चीज का, अब उसके बाद में कभी किसी के सामने छींके आना शुरू हुआ तो वो कोई सो रही और किसी परेशानी आपको, नहीं कुछ नहीं है, कई बार किया है, पहली बार ही नहीं, ये कोई कठिन काम नहीं है, मैंने तो बहुत बार किया है ऐसा। ये किसके बारे में कह रहा है? कठिन से कठिन काम जो तुमने कई बार किया हो, तुम्हें उसमें तकलीफ नहीं दिख रही है, ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि ये संयोग छूट जाने पर तुम्हें तकलीफ नहीं दिखेगी, क्योंकि तुम अपने आप को अनादि अनंत स्वीकार कर रहे हो। मौत भी कम खतरनाक चीज नहीं होती मुकुंद भाई, मौत वो झटका होता है जिस झटके में सब कुछ छीन लिया जाता है। एक मोबाइल चला जाए तो रोता है, गाड़ी चोरी चली जाए और मिले नहीं और पुलिस भी ढूंढ नहीं पाए, वो पता नहीं लगे, कितनी तकलीफ होती है। घर में जवान बच्चे की मौत हो जाए तो कितनी तकलीफ दिखाई देती है हमारे को, विचार मात्र से डरता है। तो आप कल्पना करके देखो, आज सबके बच्चे हैं अपने अपने, एक बार सोचो ऐसा कि अभी प्रोफेशन खत्म होने पर सूचना आने वाली है कि बच्चा नहीं रहा। अब सोचो जरा, फील करो इसको क्या स्थिति होती है। मुझे सूचना मिले अभी, मान लो कि बच्चा नहीं है, खत्म हो गया, मर गया, क्या होता है बताओ? कितनी बड़ी घटना है,
डर लगता है ना हमारे को, सुनो अभी तो बेटा ही गया है, एक दिन ऐसा आएगा जब बेटा भी जाएगा, पत्नी भी जाएगी, बच्ची भी जाएगी, हस्बैंड भी जाएंगे, ये आपका मकान भी जाएगा, छत भी जाएगी, कपड़े भी जाएंगे, और ये तन, ये सारी चीजें एक साथ छीन ली जाएगी। सोचो जरा सब तकलीफ का क्या होगा, सोच सकते हैं आप? एक व्यक्ति के चले जाने पर आप तिलमिला उठे, और होता ही है ना, घटनाएं घटती है ना, ऐसी रोजाना दिखती तो है। एक व्यक्ति के वियोग हो जाने पर हम अत्यधिक आकुलित व्याकुलित हो गए। जब आपके पूरे परिवार के सदस्य एक साथ आपसे छीन लिए जाएंगे तो कितनी तकलीफ होगी। एक साथ सब मर गए, सबके लिए मैं मरा हूँ लेकिन मेरे लिए भी सब मर गए ना, मेरे लिए भी तो कोई नहीं है, अब कितनी तकलीफ है। सुनो, जिन ज्ञानी धर्मात्माओं को इस बात का भरोसा होता है कि ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ, उन्हें तकलीफ नहीं होती, सिर्फ उनको मौत की दिक्कत नहीं है। वो जानते हैं इसमें क्या है, अनंत वायु संयोग प्राप्त हुए हैं, अनंत वायु संयोगों को छोड़ा है, उसमें कोई दम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सारी की सारी दिक्कत अनादि अनंत नहीं मानने पर खड़ी होती, कभी विनाश नहीं होता। ये बहुत बड़ी पावर मिल गई, विनाश नहीं होता। रेलवे ट्रैक पर जाकर के खड़ा हो जाए और ट्रेन निकले तो डर नहीं लगे कि मैं मर जाऊंगा, यहाँ तो घबराहट होती है, बगल में से गाड़ी तेज स्पीड से निकल जाए तो धड़कन नहीं रुकती नीचे से ऊपर तक 10 मिनट तक, बगल में से तेज स्पीड से निकल जाए तो अब कुछ कर तो सकता नहीं, निकल गया वो तो 10 मिनट तक घबराता है। और यदि कदाचित तू खड़ा है और कोई गाड़ी स्पीड से आकर के तेरे बगल में आकर के बहुत तेजी से ब्रेक लगाया, ऐसा ब्रेक लगाया तो 1 इंच की दूरी पर आकर के रुक गई और ये कांपता है तो क्या कहता है सामने वाले को, पलट करके जवाब देता है, देख के नहीं चलते। ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? तो क्या कहेगा, भाई साहब देख करके चला इसलिए तो बच गए। जबरदस्ती सुना रहे हो मेरे को, मैं इतना सावधानी से चला कि मैंने तुम्हारे को बचा लिया। ये जो घबराहट चित्त में थी, ये घबराहट किस बात की थी? मरने की। मर जाता तो क्या होता? और जो गाड़ी चला रहा था उसने भी पलट करके कह दिया कि मर जाते सब बात करते, मरे थोड़ी ना हो, मर जाता तो फिर कौन बात करता, मर ही जाता तो बात कौन करता। भैया ये सारी तकलीफ, ये सारा दुख, ये सारी पीड़ा एकमात्र इस बात की है कि तुम अपने आप को अनादि अनंत स्वीकार नहीं करते। अनादि अनंत स्वीकार न करने पर, अनादि अनंत स्वीकार नहीं करने का मतलब है तुम अपने आप को पर्याय जितना मानते हो, तुम अपने आप को पर्याय से देखते हो, और पर्याय से देखने पर, पर्याय के वियोग हो जाने पर दुखी हुए बिना रहेगा नहीं। जो अपना अस्तित्व संयोगों से मानता है उस व्यक्ति को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि संयोगों का वियोग 100% होगा। और जो अपने आप को संयोगों से भिन्न ज्ञायक मानता है, अब उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी कर नहीं सकती है, क्योंकि मैं तो ज्ञायक हूँ। अब दिखाओ अंगूठा, मैं तो ज्ञायक हूँ, अब करो कुछ भी, छीन लो मुझसे कुछ भी, ये सुनो मेरे पास जो संपदा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इस अनादि अनंत संपदा को कोई छीन के बताए, मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप हूँ, इसमें कोई दिल में डाल करके दिखाए, मेरे अस्तित्व को कोई दुनिया का पदार्थ चैलेंज करके बतलाए, और गजब की बात कह दी कि ये मेरा अस्तित्व जो था ये स्वयं से था, अपने आप से था, किसी परमात्मा के कारण भी नहीं, मेरा ये अस्तित्व अपने आप से है, मुझे ये शक्ति किसी ने दे दी हो, मेरे ऊपर किसी की कृपा हो गई हो, किसी का उपकार हो गया हो, किसी परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे को ये फल मिल गया हो, ऐसा नहीं है। मैं तो स्वयं सत्ता स्वरूप हूँ, चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक तत्व विराजमान हूँ अंदर में, देखने वाले में विराजमान। ऐसा यदि अपने आप को स्वीकार करे, चैतन्य तत्व यदि अपने आप को स्वीकार करे, ज्ञायक यदि अपने आप को स्वीकार करे, अनादि अनंत यदि अपने आप को स्वीकार करे, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि शुद्धता प्रकट हुए बिना न रहे। एक बार ऐसा अनुभव करें तो आचार्य देव ये रिटर्न में लिख करके दे रहे हैं
कि तू अल्प काल में परमात्मा थसे। सही बोला ना मेरे साथी?
एकदम बड़ा।
अल्प काल में परमात्मा हो जाएगा। ये परमात्मा बनने का मार्ग है, हमें हमारे महाभाग्य से मिल गया है। एक बार मैं कौन हूँ और मेरे में क्या विशेषताएं हैं, ये समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हमें गहराई से करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ हम सभी के अंतर में जागृत हो, इसी भावना से बात को यही
स्वरूप परम पुरुष गुरु सदगुरु परम ज्ञान सुख दाम
प्रवचन चार थी साढ़ा पांच, साढ़ा पांच थी साढ़ा छह डिनर, साढ़ा छह थी साढ़ा सात बीजू प्रवचन। तो स्पॉन्सर्स भी अवेलेबल, तो जिन्हें लाभ देव यू आर मोस्ट वेलकम।